हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। तब अमन ने हल्का सा कांपते हुए इंस्पेक्टर साहब से कहा था, ठीक है, आप हमारे सभी कर्मी से बात कर सकते हैं। और तभी वो अपने एक बॉडीगार्ड की ओर इशारा करता है और कहता है कि इंस्पेक्टर साहब को सभी कॉलीग से मिलवा दो और जल्दी ही गाड़ी तैयार करवाओ। हम लोग राधिका के घरवालों से मिलने के लिए जाएंगे। अमन की बात सुनकर बॉडीगार्ड ने हाँ में सर हिला दिया था और जल्दी बॉडीगार्ड इंस्पेक्टर को उसकी टीम के समेत ऑफिस में काम करने वाले कर्मी के पास ले गया था। और इंस्पेक्टर साहब अपने हिसाब से राधिका मर्डर केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू करने लगे थे और सभी से पूछताछ करने लगे थे। वहीं विक्रांत रंधावा अपने केबिन में खड़ा हुआ पुलिस का एक एक मूवमेंट देख रहा था और उसके चेहरे पर किसी भी तरह का कोई भाव नहीं था। लेकिन जैसे ही मल्लिका की नज़र विक्रांत के सपाट चेहरे पर पड़ी तो वो कुछ सोचने लगी थी। कहीं न कहीं मल्लिका को विक्रांत पर शक हो रहा था कि हो ना हो राधिका के मर्डर केस में विक्रांत का ही कहीं न कहीं हाथ हो सकता है, क्योंकि मल्लिका विक्रांत की शक्ति का अच्छी तरह से अंदाज़ा लगा तो चुकी थी, तो इसीलिए उसे विक्रांत रंधावा पर ही शक हो रहा था। लेकिन वो ये सोचने लगी थी कि आखिर विक्रांत रंधावा राधिका का खून क्यों करेगा, आखिर क्या कारण हो सकता था। मैं विक्रांत रंधावा अपनी आँखें बंद करके कल रात जो कुछ भी हुआ था उसे याद करने लगा था। ऑफिस से निकलने के बाद विक्रांत रंधावा ने सीधा राधिका का पीछा किया था और राधिका ने ये बात जल्दी ही समझ ली थी कि कोई ना कोई उसका पीछा कर रहा है। इसीलिए वो एक कंस्ट्रक्शन साइट की बिल्डिंग में छिप गई थी, क्योंकि उसे ऐसा महसूस होने लगा था कि कोई ना कोई उसके पीछे है। तो इसीलिए अपनी जान बचाने के लिए वो एक कंस्ट्रक्शन साइट की बिल्डिंग पर छिप गई थी। हालांकि उसे घर जाने के लिए देर हो रही थी, लेकिन उसने कंस्ट्रक्शन साइट से ही अपने घर पर किसी को फोन करके हेल्प के लिए मैसेज भेज दिया था और जल्दी ही उसके घर वाले उसे लेने के लिए वहां पहुंचने वाले थे, क्योंकि राधिका ने अपनी लोकेशन भी वहां उसे सेंड कर दी थी। राधिका के परिवार में केवल उसके पिताजी और माताजी और एक छोटा भाई था। राधिका उनके घर में अकेली कमाने वाली थी, क्योंकि उसके पिता बीमार रहा करते थे। इसीलिए राधिका ने बहुत छोटी उम्र से ही अपना पूरा घर संभाल लिया था और वो जॉब करने लगी थी। राधिका ने एक ऐप यूज किया था जिसमें हेल्प के लिए कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो लड़की 3 जगह मैसेज कर सकती थी। तो इसका एक मैसेज उसके फ्रेंड सर्कल में चला गया था, दूसरा उसके परिवार को और तीसरा सीधा पुलिस स्टेशन में चला गया था। तो राधिका को ज्यादा देर इंतजार नहीं करना पड़ा था और जल्दी ही पुलिस के साथ उसके घर वालों, उसका छोटा भाई, उसके पिता के साथ और उसकी फ्रेंड अपने पिता के साथ वहां पहुंच चुके थे और उन्होंने राधिका को वहां से बाहर निकाल लिया था और सही सलामत वो उसे उसके घर ले आए थे। तब राधिका ने पुलिस को बता दिया था कि उसे कुछ ऐसा है लग रहा था कि कोई उसके पीछे है, इसीलिए उसने जल्दी से हेल्प के लिए ग्रुप मैसेज डाल दिया था। तब पुलिस वालों ने उसे आश्वासन दिया था कि आइंदा से कभी भी उसे लगे कि उसकी जान, इज्जत कुछ भी खतरे में है तो वो इसी तरह का कदम उठा सकती है, घबराने की कोई बात नहीं है। पुलिस की बात सुनकर राधिका को हिम्मत मिली थी और फिर वो आराम से हर रोज की तरह अपने माँ बाबूजी के साथ खाना खाने लगी थी। खाना खाने के बाद फ्री होकर वो अपने भाई का होमवर्क वगैरह चेक किया करती थी और उसके बाद सीधा अपने कमरे में आराम करने के लिए जाया करती थी। तो जैसे ही राधिका अपने कमरे में आराम करने के लिए गई तो उसे और अपने कमरे की कुंडी लगाकर जैसे ही वो बेड पर बैठी तो उसे एहसास हुआ कि कोई उसके बराबर में कोई बैठा हुआ है। और जैसे ही डरते डरते उसने उसकी ओर देखा तो वो हैरान रह गई थी, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि विक्रांत रंधावा था जो उसकी बेड पर ही बैठा हुआ था। विक्रांत को देखकर राधिका चीखना चाहती थी, लेकिन वो चीख नहीं पाई थी और फिर डरते डरते बोली थी, सर 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 सर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं और इस तरह से मेरे कमरे में आप कैसे आए, जबकि हमारा तो घर बंद था, ये सब क्या हो रहा है। राधिका को इस बात का दूर दूर तक कोई अंदाजा नहीं था कि उसके कमरे में जो छोटी सी खिड़की थी वो उसके लिए आज जानलेवा साबित हो सकती थी। तब विक्रांत रंधावा राधिका की आंखों में आंखें डालकर बोला था, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई तारा को तकलीफ देने की, तुमने उसे स्टोर स्टोर रूम में बंद क्यों किया था। अचानक रंधावा के मुंह से तारा का नाम सुनकर राधिका बुरी तरह से चौंक गई थी और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस वक्त विक्रांत रंधावा को क्या जवाब दे, क्योंकि विक्रांत रंधावा की आंखें एकदम से लाल सुर्ख हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि उसकी आंखों में खून उतर आया हो। तब राधिका जल्दी जल्दी बात बनाते हुए कहा था, वो सर, मैं तारा मैडम से माफ़ी मांग ली थी, वो मुझसे गुस्सा नहीं है, लेकिन आप उनके लिए इतनी केयर क्यों कर रहे हैं? और आप उनसे मिलकर पूछ सकते हैं इस समय मेरे कमरे में क्या कर रहे हैं आप? क्योंकि विक्रांत रंधावा अमन का दोस्त था और बड़ी पार्टी उसके स्वागत के लिए ऑर्गेनाइज हुई थी, तो ऑब्वियसली ऑफिस का बंदा उसे जानता था, तो इसीलिए राधिका भी उसे देखते ही पहचान गई थी। लेकिन उसे इस वक्त अपने कमरे में देखकर उसकी हालत खराब होने लगी थी। तब विक्रांत रंधावा ने राधिका से कहा था, तुमने तारा को स्टोर रूम में बंद क्यों किया था? एक बार फिर से इस सवाल को सुनकर राधिका हैरान रह गई थी। वो सच कहने लगी थी, सर मैं अभी तो आपको जवाब दिया है, वो एक गलतफहमी थी सर, और कुछ नहीं था, और तारा मैडम ने मुझे माफ कर दिया था। मुझसे छोटी सी गलती हो गई थी क्योंकि मैं उनसे जेलस फील करने लगी थी। जैसे ही राधिका ने ये कहा, विक्रांत रंधावा ने उसकी गर्दन को कस कर पकड़ लिया था और बुरी तरह से उसके गर्दन को अंदर ही अंदर उसकी एक एक हड्डी को अपने मजबूत हाथों से कुचल दिया था। ऐसा लग रहा था जैसे भारी भारी सा ट्रक उसकी गर्दन के ऊपर से उतरा हो। उसके जिस्म की गर्दन की एक एक हड्डी टूट चुकी थी। विक्रांत रंधावा ने राधिका को बड़े ही दर्दनाक और बहुत ही ज्यादा बुरी मौत दी थी, और उसके बाद वो हमेशा की तरह काला धुआं का रूप लेकर उसकी खिड़की के रास्ते से गायब हो चुका था। और राधिका बेड पर मृत पड़ी हुई थी। उसकी गर्दन दबाने की वजह, गर्दन की सारी हड्डी टूटने की वजह से वो एकदम से ढीली डाली सी हो गई थी, और उसका जो मुंह था, उसका सर, वो उसके कंधों के जा लगा था। उसकी गर्दन तो बीच में से गायब भी हो गई थी, क्योंकि गर्दन हड्डियों से जुड़ी हुई है, और अगर गर्दन की सारी हड्डियां ही हटा दी जाए तो केवल खाल खाल बचती है, तो वो खाल सीधी सुकड़ कर उसे कंधों से जा लगी थी। राधिका की डेड बॉडी उसे वक्त बहुत ही ज्यादा भयानक लग रही थी। अगली सुबह जैसे ही उसके हर रोज की तरह उसकी माताजी उसे जगाने के लिए आई, लेकिन राधिका का कितनी देर तक दरवाजा न खोलने पर उन्हें कुछ अनहोनी होने की आशंका होने लगी थी। उन्होंने सीधा देर न करते हुए पुलिस वाले को, जिसने रात राधिका को अपना नंबर दिया था, उसको सीधा कॉल कर दिया था, और जल्दी ही सभी पुलिस वाले वो राधिका के घर पर आ गए थे। और जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, राधिका कितनी बुरी हालत देखी, तो पुलिस वालों की रूह तक कांप गई थी। पुलिस वालों ने आज तक कितने ही के मर्डर केस देखे थे, लेकिन इतना भयानक मर्डर केस आज तक उनकी जिंदगी में नहीं आया था। सारी इन्वेस्टिगेशन कम्प्लीट करने के बाद पुलिस चली जाती है, और राधिका के कुछ मर्डर फोटोज वो अमन को दिखाना नहीं भूलता है, क्योंकि इतनी भयानक मौत कि उन्होंने फोटो के रूप में कैद कर लिया था।
और जैसे ही अमन ने वो सारी फोटोज देखी, उसे समझते हुए एक पल भी नहीं लगा था कि ये काम किसी और का नहीं बल्कि किसी न किसी काली शक्ति का ही है। अमन को कहीं ना कहीं केवल काली शक्तियों पर ही शक जा रहा था, क्योंकि अमन की नजरों में तो और कोई उसका दुश्मन कहीं से कहीं तक नहीं था। लेकिन अमन को इस बात का दूर दूर तक कोई अंदाज़ा नहीं था कि ये काम काली शक्तियों का नहीं था, बल्कि एक ऐसे शख्स का था जो पिछले जन्म से ही जन्मों जन्मों से तारा का दुश्मन था, तारा के जिस्म का प्यासा था। उसे अगर कुछ चाहिए तो वो सिर्फ तारा को हल्की सी आवाज़ में बात करने वाले, ऊँची आवाज़ में बात करने वाले, उसे तकलीफ़ देने वाले, उसे टॉर्चर करने वाले लोगों को वो बद से भी बदतर मौत दे दिया करता था। ये आदत उसकी पिछले जन्म से ही थी, जो अभी भी जन्म में भी बनी हुई थी। वो समझता था तारा के जिस्म पर उसे तकलीफ देने पर अगर किसी का हक है तो सिर्फ और सिर्फ उसे भयानक राक्षस का है, और किसी का कोई हक नहीं है। अगर उसके अलावा किसी ने भी तारा को किसी भी तरह का दुख दर्द देने की कोशिश की तो वो उसकी हालत बहुत ही ज्यादा बुरी करेगा। वही करिश्मा जी तारा को अपने बीते दिनों की बातें बताने लगी थी। वो कहने लगी थी, जिस दिन अमन के पिताजी गायब हुए थे उसे दिन अमावस्या की काली रात थी, चारों ओर घोर अंधकार छाया हुआ था, और बेटा तुम नहीं जानती, काली शक्ति हमारी जन्मों जन्मों से दुश्मन है, और अमावस्या की काली रात को काली शक्तियों की जो शक्ति होती है, उनका जो तेज होता है वो सबसे ज्यादा प्रज्वलित होता है, उनकी शक्तियाँ बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती हैं। उसे रात में, उस रात अमन को हमेशा की तरह घूमने के लिए उसके पिताजी बगीचे में ले गए थे, लेकिन जैसे ही वो उसे बगीचे में गए, काली शक्तियों ने उन पर हमला कर दिया था, क्योंकि वहाँ पर अमन से दादाजी जिन महाराज समाधि लिए हुए थे, तो उन्होंने अमन की जान तो बचा ली थी, लेकिन वो अपने बेटे को उन काली शक्तियों के चंगुल से नहीं बचा पाए थे, और उनकी आंखों के सामने काली शक्तियां अमन के पिताजी को ले गई थी। इसीलिए तब से आज तक ना तो जिन्न महाराज अपनी तपस्याओं के द्वारा उन अपने बेटे को ढूंढ पाए हैं और ना ही हम लोग। और मैं दिन पिछले 15 सालों से ऐसा कोई कोना नहीं था, ऐसी कोई जगह नहीं थी जहाँ उनको ना ढूंढा हो, लेकिन आज तक वो मुझे नहीं मिल पाए थे। धन